ओम शांति। आप सभी 3-4 दिन से मेडिटेशन के बारे में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मेडिटेशन करना आ गया, क्योंकि वो तो मेन बात है ना। यहाँ जो जिस लक्ष्य से आप सभी यहाँ आए हैं, ज़रूर रिट्रीट अटेंड करने के लिए, लेकिन ये भी तो लक्ष्य था, मेडिटेशन सीखना है। तो कुछ हद तक आप सभी ने सीखा होगा, लेकिन आज जो भी आपके मन में थोड़ा डाउट्स हैं मेडिटेशन के बारे में, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद तो उसको कंटिन्यू रखना है ना, तो कैसे करना है, किस विधि से करना है, और आपका टेस्ट भी होगा कितना समझे हैं आप। ठीक है, तो सबसे पहले मेडिटेशन क्यों करना है, क्यों करना चाहते हैं मेडिटेशन? मन शांत के लिए, शांत मन के लिए। और मेडिटेशन करना क्यों चाहते हैं? आत्मिक स्वरूप। वो तो आप 7 डेज कोर्स कर लिए हैं आपने। ओके, आत्मिक स्वरूप को जागृत करने के लिए, और टू स्टे काम इन आर रियल लाइफ। वाई डू यू वॉन्ट टू स्टे काम? ओके, एनीथिंग एल्स? मैनेज योर माइंड। और मन को मैनेज क्यों करना चाहते हैं आप? या लेट्स अंडरस्टैंड दैट, मन को मैनेज क्यों करना चाहते हैं आप? परिस्थितियों से विचलित होने से बचने के लिए। ओके, और मन को मैनेज इसीलिए करना है, तो सब कुछ होता ही मन से ना। मन बीज है ना, थॉट्स हमारा बीज है, सीड है। तो अगर उसको हमें ठीक किया, थॉट्स को ठीक किया, तो एक्शंस ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। तो अभी तक हम जो किस चीज को मैनेज कर रहे थे, केवल अपना एक्शंस को मैनेज कर रहे थे, है ना। कभी कभी वो भी मैनेज नहीं होता, ठीक है, फ्लो के साथ जो हो रहा है होने दो, है ना, जो फ्लो के साथ हमारा रिएक्शन हो रहा है तो होने दो। लेकिन अभी यहां आकर के हम सीख रहे हैं कि हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं, और कर्मों को बदलने की विधि है मन को बदलो, थॉट्स को बदलो, विचारों को बदलो, और मन को सशक्त करने के लिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, मेजॉरिटी हम जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी बात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें पता है झूठ नहीं बोलना है, तो लेकिन परिस्थिति ऐसा आ जाने के बाद फिर हम सोचते हैं कि नहीं, इससे इजीली हम निकल सकते हैं झूठ बोल करके, एस्केप कर सकते हैं इस परिस्थिति से झूठ बोल करके, तो हम इजी वे ढूंढते हैं झूठ बोलकर। वो छोटी सी बात है, लेकिन फिर वही चीज बड़ा होकर के बहुत बड़ी चीज हो सकता है। फिर ट्रस्ट इश्यूज आ सकता है, बहुत सारी बातें, रिलेशनशिप खराब हो सकता है, बहुत सारी बातें आती हैं। लेकिन जानते हुए भी हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आंतरिक शक्ति की कमी है, राइट? तो वो आंतरिक शक्ति आएगा अपने आप को जान करके, उस सोर्स के साथ कनेक्शन जोड़ने से, हु इज द पावर हाउस ऑफ एनर्जी, है ना। तो उस पावर हाउस के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए एक ही नियम है, एक ही रूल है। वो कौन सा है? एक ही रूल है, कौन सा रूल है? मेडिटेशन और उस परमात्मा को या हायर एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए एक रूल है, कौन सा है? हाँ जी, वो लेवल तो बहुत हाई है, वहां जाकर के कनेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है ना। सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक ही रूल है, अपना समझना पड़ेगा, राइट। और दूसरी बात, राइट, ये है रूल। रूल क्या है? अपने आप को आत्मा समझेंगे तो वो कनेक्शन जुड़ेगा। आत्मा नहीं समझेंगे, शरीर के साथ, माना शरीर के साथ, माना क्या है, अपना नाम, अपना जेंडर, अपना नेशनैलिटी, जो फिजिकल आइडेंटिटी के साथ जुड़ी हुई है, मेरी प्रोफेशन है, जो भी है, फिजिकल आइडेंटिटी के साथ जो जुड़ी हुई बातें हैं, उसको मैं आइडेंटिटी समझ करके मैं परमात्मा को याद करती हूँ, वो कनेक्शन जुड़ेगा नहीं। क्यों क्यों नहीं जुड़ेगा? ये आइडेंटिटी को हमें शेड करना पड़ेगा, उस आइडेंटिटी को थोड़े समय के लिए भूलना पड़ेगा। क्यों? आपको आत्मा समझना क्यों जरूरी है? परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए। ओके, दैट इज रियलिटी। वी आर प्लेइंग आवर पार्ट्स विथ आवर बॉडी। इस कॉस्ट्यूम को पहन करके हम अपना पार्ट प्ले कर रहे, दैट इज रियलिटी। लेकिन कनेक्शन हम क्यों नहीं जोड़ पाते हैं परमात्मा के साथ? इस कॉस्ट्यूम के आइडेंटिटी के कॉन्शियसनेस में रहते हुए जब परमात्मा को याद करते हैं। यस, जैसे दो वायर्स कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, इंसुलेशन को निकालना पड़ता है, तो वो कॉपर वायर कनेक्ट होगा तो वो करंट फ्लो होता है। परमात्मा की आइडेंटिटी क्या है? वो लाइट है, प्रकाश है, एंड ही डजंट हैव अ बॉडी। जब उनको बॉडी नहीं है तो मैं अपने बॉडी के आइडेंटिटी को रह उसके आइडेंटिटी के साथ मैं कनेक्ट करूं, आई एम कनेक्टिंग विथ माय इंसुलेशन। मैं अपने इंसुलेशन के साथ कनेक्ट करती हूं, वो एनर्जी फ्लो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए अपने आप को आत्मा समझेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कनेक्शन जुट जाएगा, है ना। तो बार बार इसका अभ्यास करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि दैट इज रियलिटी, इट इज नॉट समथिंग दैट वी आर इमेजिनिंग। जो हम कल्पना कर रहे हैं वो बात नहीं है, है ना। रियलिटी के तरफ जा रहे हैं इस मेडिटेशन के द्वारा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मेडिटेशन में कुछ और भी समझ सकते हैं अपने आप को, दूसरी चीजें, लेकिन दिस मेडिटेशन इज टेकिंग अस टूवर्ड्स अवर रियलिटी, क्योंकि हम उस चीज को भूल गए हैं। समय प्रति समय जब कोई प्रॉब्लम्स आते हैं या फिर किसी को देह त्याग करते हुए देखते हैं, फ्यूनरल अटेंड करते हैं, तो फिर थोड़ा बहुत स्मशानी वैराग्य आता है, फिर ये समझ में आता है एक दिन तो सबको तो जाना ही है, ये समझ है। लेकिन फिर एक दिन के बाद क्या होगा? वी आर सो बिजी, आपके रूटीन में इतने बिजी हैं, तो फिर वो फिर जो समझ आई थी फिर से हम उसको भूल जाते हैं। तो लेकिन यहां हम ये कहते हैं मेडिटेशन करने के लिए आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को त्याग करने की जरूरत नहीं है। इस मेडिटेशन को अब प्रैक्टिस करते हुए इसका लाभ क्या होगा ना, हम मेडिटेशन करना क्यों चाहते हैं? जैसे मैंने पूछा, मन की शांति के लिए, दैट इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। असली क्या है लक्ष्य हमारा मेडिटेशन का? संस्कारों में परिवर्तन। क्योंकि अगर मैं आधा घंटा मेडिटेशन किया, उस टाइम पे तो हमने मन की शांति महसूस कर ली, लेकिन क्या वो मन की शांति हम फिर अगले 23 घंटों के लिए सस्टेन कर पाते हैं? सस्टेन कर पाते हैं वो मन की शांति? नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फिर से वो कॉन्शियसनेस से बाहर आ गए हैं, फिर से हम टेंशन में आ गए, फिर से गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस में आ गए, तो फिर वो आधा घंटा मेडिटेशन करने का कोई फायदा नहीं रहा। फिर हम कहते हैं कि इतना मैं मेडिटेशन करती हूँ तो भी मेरा गुस्सा नहीं जा रहा है, मेरे संस्कार या मना बहुत सारे आदतें नहीं जा रही है, क्योंकि हम लक्ष्य ही गलत कर रहे हैं रख रहे हैं ना। जो भी हम कर्म करते हैं कुछ ना कुछ लक्ष्य रख करके करते हैं ना, पढ़ाई भी पढ़ते हैं तो लक्ष्य रखते हैं कि मुझे ये करना है, ये डिग्री पाना है, तो इसीलिए कोई भी कर्म करते हैं लक्ष्य रखते हैं। ऐसे ही ये मेडिटेशन जो हम करते हैं, इसका अल्टीमेट लक्ष्य है अपने संस्कारों में परिवर्तन, अपना पॉजिटिव संस्कार इतना नेचुरल हो जाए कि फिर हमें उसके साथ फिर से युद्ध करने की जरूरत ना पड़े। जैसे अगर मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरे अंदर कि ये पर्टिकुलर नेगेटिव संस्कार है, गुस्सा वाला संस्कार है मेरे अंदर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, छोटी छोटी बातों में एंग्शियस हो जाना, ये गुस्से वाला संस्कार है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मेडिटेशन जब हम करते हैं तो फिर उस क्योंकि संस्कारों वो नेचुरल होना चाहिए ना। आधा घंटा मैंने मेडिटेशन किया, गुस्सा तो कम हुआ है, लेकिन क्या मैं कर्म करते समय भी, क्योंकि जो भी परिस्थिति आती है वो अचानक आती है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो ऑटोमेटिकली मेरा गुस्सा चढ़ गया, राइट? तो फिर वो परिवर्तन कैसे आएगा? नेचुरल हो जाना चाहिए ना, वो मेरा रिएक्शन जो नेगेटिव था, ग्रेजुअली वो संस्कार परिवर्तन हो करके हर परिस्थिति में मेरा जो रिएक्शन है रेस्पॉन्स में परिवर्तन हो करके फिर कामली मैं उसको रेस्पॉन्ड करूं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो इट्स अ टेक्निक, ये मेडिटेशन में हम यूज करते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी जो भी चीज है वो अंधकार के रूप में है। जैसे जस्ट अ सिंपल एनालॉजी ऑफ लाइट एंड डार्कनेस, ठीक है, अगर इस कमरे में अगर अंधेरा है तो वो उजाला कैसे लाएंगे इसके अंदर, रोशनी कैसे लाएंगे इस कमरे के अंदर? लाइट ऑन करेंगे, खिड़कियां दरवाजा खोलेंगे ताकि सनलाइट अंदर आ जाए, या फिर रात हो तो फिर कैंडल जलाएंगे, लाइट जलाएंगे, जो भी है किसी ना किसी प्रकार के प्रकाश के स्रोत को, सोर्स ऑफ लाइट को हम लाते हैं, तो डार्कनेस ऑटोमेटिकली चला गया, राइट? तो फिर हम अंधेरे को ये नहीं कहते भाग जाओ, अंधेरा चला जाओ, चले जाओ, ये नहीं कहते। अंधेरे को भगाने का तरीका है लाइट लेके आओ, अंधेरा भाग गया, राइट? ऐसे ही ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी डार्कनेस है, पॉजिटिविटी लाइट है। अभी नेगेटिविटी मेरे पास क्या है? गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, ये सब है, राइट? तो ये नेगेटिविटी जो डार्कनेस है तो उसको कैसे भगाएंगे? अगर मैं बार बार सोचूं मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, जोर से बोलना नहीं चाहिए, तो अगर बार बार बोलती रहूं तो क्या होगा? गुस्सा नहीं करना है तो क्या होगा? गुस्सा वाला संस्कार बदल जाएगा, कम हो जाएगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। कम हो जाएगा? बढ़ेगा। कैसे? याद कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं ना कि कम हो जाए, नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूं, तो इससे बढ़ेगा या घटेगा? एक मिनट, उनको वो जवाब दे देना जो ज्ञान में चल रहे हैं, वो नहीं, वो उनको पूछ रही हूँ। बढ़ेगा कैसे? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? लेकिन उसको मैं रोकने की कोशिश कर रही हूँ ना। राइट राइट, मैं अगर ये शब्द यूज कर रही हूं कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, आई एम अग्रीवेटिंग दैट पर्टिकुलर संस्कार। क्यों, कैसा हो रहा है, व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दैट? क्योंकि सिंपल माइंड कैसे काम करता है, वो चित्रों में काम करता है। राइट अगर आपको अभी कहे, सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं अगले 30 सेकेंड के लिए, द नेक्स्ट 30 सेकेंड, एक मिनट के लिए भी नहीं, अगले 30 सेकेंड के लिए आप बंदर को याद नहीं करना। क्या याद आया? बंदर याद आया? कौन सा बंदर? लाल मुंह वाला, काला मुंह बंदर, छोटा वाला, बड़ा वाला, है ना? अलग अलग साइजेस, अलग अलग शेप्स, अलग अलग कलर्स के अलग अलग थे। राइट तो इंस्ट्रक्शन क्या था? बंदर को याद नहीं करना। सेंटेंस में क्या था? बंदर शब्द था और नहीं ना शब्द था। राइट तो बंदर का चित्र है और नहीं का कोई चित्र नहीं है। राइट जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस हम यूज करते हैं तो नेगेटिव एंटिटी का चित्र आ जाता है, बंदर का चित्र आ गया, लेकिन फिर सोचेंगे कि नहीं, याद नहीं करना, याद नहीं करना है। वी आर ऑलरेडी गिविंग आवर एनर्जी टू द मंकी, क्योंकि जो भी हम सोचते हैं उसको हम एनर्जी दे रहे हैं। आप याद रखना, जो भी हम सोच रहे हैं उसको हम मन से एनर्जी दे रहे हैं। अगर मैं बार बार गुस्सा याद कर रही हूं, गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, आई एम एनर्जाइजिंग माई संस्कार ऑफ एंगर। फिर मैं सोचू कि नहीं, गुस्सा नहीं करना है, नहीं का कोई चित्र रही नहीं ना। तो इसीलिए जो नहीं चाहिए उसके बारे में नहीं सोचना है, क्या चाहिए जिंदगी में उसके बारे में सोचना चाहिए। तो गुस्सा नहीं चाहिए, तो उसके जगह पर क्या चाहिए, उसका अपोजिट क्या है? आग को बुझाने के लिए पानी चाहिए। राइट गुस्सा एंगर आग है, उसके लिए पानी क्या है? शांति, पीस। तो आपने ये समझा है कि आत्मा का जो ओरिजिनल क्वालिटी क्या है, 7 गुणों के बारे में समझा है। आत्मा सतोगुणी है, ओरिजिनल क्वालिटीज आत्मा के शांति, आनंद, सुख, प्रेम, शक्ति, पवित्रता और ज्ञान, ये आत्मा के ओरिजिनल गुण है। जैसे सफेद रंग में 7 रंग समाये हुए हैं, तो ऐसे आत्मा में ये 7 गुण ओरिजिनल है, उसका अपने गुण है। तो अभी शांति आत्मा का ओरिजिनल गुण है, शांति के परसेंटेज कम होने से गुस्सा मैं महसूस कर रही हूं। राइट तो अभी गुस्सा मेरा संस्कार बन गया है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि पीस का परसेंटेज मुझ आत्मा में वो कम हो गया है। तो अभी गुस्सा खत्म करना है तो क्या करना होगा? शांति की मात्रा को मुझे बढ़ाना होगा। इट्स दैट सिंपल। ठीक है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो फिर शांति की अनुभूति जितना हम करते जाएंगे, आत्मा के अंदर शांति की शक्ति को बढ़ाते जाएंगे, भरते जाएंगे, तो धीरे धीरे आप अपने आप को देखेंगे कि आपके बिहेवियर में धीरे धीरे चेंज आना शुरू हो जाता है। पहले जो छोटी छोटी बातों में आप फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, वो धीरे 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 वो कम होता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव जो भी हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने अंदर नेगेटिव संस्कार, उसके अपोजिट जो पॉजिटिव गुण है उससे अपने अंदर भरने की जरूरत है, और फिर ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव संस्कार खत्म होना शुरू हो जाता है। ओके, सो द अल्टीमेट एम इज नॉट जस्ट पीस ऑफ माइंड, केवल मन की शांति नहीं, लेकिन अपने बिहेवियर में, अपने कर्मों में, अपने संबंधों में सब कुछ परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं जब हम मेडिटेशन सीखते हैं तो घर घर स्वर्ग बन जाता है। क्यों घर घर स्वर्ग बन जाएगा? क्योंकि हम लाइफ के डेप्थ को समझना शुरू करते हैं। केवल हम सुपरफिशियल लेवल में हम लाइफ को नहीं देखते, हर चीज डेप्थ में देखना शुरू करते हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि अगर कोई भी इंसिडेंट होता है, केवल हम मान लीजिए मैं रास्ते में फुटपाथ पे जा रही हूं, बिजी रोड है लेकिन फुटपाथ में आराम से जा रही हूं, लेकिन अचानक कोई बाइक वाला आकर के मुझे ठोक दिया, राइट, दिस इज अ सिचुएशन नाउ। तो ये ठोक दिया, अभी मुझे, मैं अगर स्पिरिचुअल ओरिएंटेड नहीं हूं, आध्यात्मिकता की तरफ मेरा झुकाव नहीं है, तो फिर मैं क्या सोचना शुरू करती हूँ, मैं ब्लेम करना शुरू करूंगी कि ये क्यों, मैं तो अपने रास्ते पे जा रही थी तो ये क्यों आकर के, इसकी गलती है, ये है वो, गुस्सा आएगा उसके ऊपर, दिखता नहीं है क्या उसको, ये है वो, मतलब चिल्लाना शुरू करूंगी, लड़ना शुरू करूंगी, सब कुछ होना, तो वो कितनी एनर्जी वहां खत्म। ऑफकोर्स उसकी गलती है, ये नहीं मैं कह रहे कि उसकी गलती नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन में अगर आप होते तो आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? आप फुटपाथ पे जा रहे हैं लेकिन बाइक वाला आकर के आपको थोड़ा ठोक दिया, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? लेट इट गो, इट्स दैट इजी। कैसे, किस आधार से लेट गो करेंगे आप? पहले हड्डी वड्डी तो नहीं टूटी है, ओके ओके ओके, हाँ जी, वहां हाथ उठ रहा है एक, नहीं सुन पा रही हूँ आपकी। हाँ, अगर स्पिरिचुअल ओरिएंटेड है तो फिर आपको समझ में आता है नथिंग हैपन्स विदाउट अ रीजन। जो कुछ भी हमारे जीवन में घट रहे हैं वो बिना कारण नहीं घटते हैं, क्योंकि मेरे कर्म जो भी कुछ हुआ है, कुछ जरूर किया होगा, उसका ही रिएक्शन ये हुआ है। अभी मैं देखती हूं तो फिर लगता है कि उसकी गलती है। तो इतने सारे लोग चल रहे थे, उनको जाकर के नहीं ठोका कि मेरे पास जाकर के मुझे ही क्यों ठोका उसने, ये भी तो समझने की बात है ना। तो इतने सारे लोग चल, उनको नहीं ठोका तो मुझे ही क्यों ठोका। कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन है, तो जिसके कारण से ये जरूर हुआ है। हाँ, भले उस समय मुझे गुस्सा आएगा, लेकिन तुरंत जब मुझे याद आएगा तो कुछ ना कुछ ये हिसाब किताब जरूर हुआ होगा, तो मैं इतना इंटेंसिवली मैं रिएक्ट नहीं करूंगी, तो कहीं ना कहीं अपने आप को समझाने की कोशिश करूंगी कि नहीं, कहीं ना कुछ, चलो छोटी बात में वो सुली से कांटा हो गया तो चुप तो हो गया, ऐसे समझा करके मैं आगे बढ़ना शुरू करूंगी। तो जितना हम आध्यात्मिकता की गहराई को समझना शुरू करते हैं, लाइफ बिकम्स मच मोर इजियर. इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता है. अक्सर करके जो हम ब्लेम करते हैं ना दूसरों को, मेरे जिंदगी मेरा जिंदगी ऐसा हुआ है क्योंकि इसके कारण से, मैं हम ब्लेम करते हैं. कई बार हम अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, कहीं अपने फ्रेंड्स को ब्लेम करते हैं, कई बार अपने कोलिग्स को ब्लेम करते, बहुत सारे लोगों को हम ब्लेम करते आए हैं. मेरे जिंदगी इस एक कंडीशन के कारण ये लोग हैं. लेकिन ये समझना जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है, अपने जिंदगी की जवाबदारी खुद लेना जरूरी है कि नहीं, मुझे जो भी मिला है मेरा ही भाग्य अनुसार मिला है, है ना. तो एक कहानी हम सुना करते थे बचपन से. तो तीन राजकुमारियां थी राजा के. तो राजा हमेशा कहते थे कि देखो तुम इतने भाग्यशाली हो कि तुम राजकुमारियां हो, तो मेरे पुत्रियां हो, तो ऐसे मना बहुत ये करते थे. लेकिन एक लास्ट वाले राजकुमारी कहते थे कि नहीं, मैं अपना भाग्य का खा रही हूं, किसी के मोहताज नहीं हूं, मैं अपने भाग्य का खा रही हूं. तो राजा को बहुत गुस्सा आया कि मैं आपको पाल रहा हूं, मेरे घर में आप लोग जन्म लिए हैं, तो इसीलिए आप मना आपको सब कुछ सुविधा मिल रही है. तो उसको बहुत गुस्सा आया. तो उसको कहा कि चलो तुमको अभी देखता हूं कि तुम अपने भाग्य का खाते हो या मेरा दिया हुआ खाते हो. तो उसने राज्य से निकाल दिया बच्ची को. तो ठीक है, वो भटकती रही है जंगल में. फिर अचानक एक राजकुमार, पड़ोसी राज्य के राजकुमार मिलता है, तो उससे प्यार होता है, तो वो शादी करके वो राजकुमार उस राज्य के रानी बन जाती है. लेकिन समय ऐसा आता है कुछ सालों के बाद, वो राजा इस अपने पिता इन राजकुमारी के जो पिता है, तो उसके ऊपर इन्वेड करके अटैक करके उस राज्य पर विजय पाता है. तो फिर वो राजकुमारी पूछती है कि अपने पिताजी को, अभी पिताजी बताइए मैं अपने भाग्य का खा रही हूं या फिर आपने दिया हुआ आपके इसके खा रही हूं. वो एक केवल एक स्टोरी है, लेकिन ये हकीकत भी है कि हम अपने भाग्य का खाते हैं, राइट. जब हम अपने रिस्पॉन्स जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, तो फिर उसको चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद लेना शुरू करते हैं, है ना. तो भाग्य क्या है, भाग्य क्या है, सभी भाग्यवान बनना चाहते हैं, राइट. भाग्य क्या है, हाँ, कर्मों के जमा पूंजी वो जानते हैं, राइट. भाग्य कोई लॉटरी टिकट नहीं है जो भगवान ने किसी को दिया किसी को नहीं दिया, ऐसे पार्शियलिटी तो नहीं कर सकते भगवान ना. तो अपने ही संचित कर्म भाग्य है. अगर बुरे कर्म किए होंगे दुर्भाग्य, अच्छे कर्म किए होंगे सौभाग्य, है ना. तो इसीलिए उसको समझते हुए जितना हम कर्म को बदलना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली भाग्य बदलना शुरू हो जाता है. तो इस मेडिटेशन से क्या होता है, सेल्फ एनालिसिस करना शुरू करते हैं. केवल फिजिकल कर्मों को हम एनालाइज नहीं करते हैं, सोचना भी एक कर्म है, है ना. जितना हम पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आत्मा के अंदर अक्यूमुलेट होना शुरू होता है. सोचना पॉजिटिव के तरफ हम चैनलाइज करते जाएंगे, तो फिर एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाता है. तो फिर अपना जीवन जो है वो सशक्त होना शुरू होता है. और एक है सोल कॉन्शियसनेस और दूसरा है परमात्मा के साथ कनेक्शन. ये दोनों से फिर वो एनर्जी बढ़ना शुरू होता है, संस्कारों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है. तो फिर ऑटोमेटिकली भाग्य बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि कर्म बदला तो भाग्य ऑटोमेटिकली बदलना शुरू हो जाता है. ठीक है, और कोई क्वेश्चंस हैं आपके मन में, क्योंकि लास्ट सेशन है आज, तो आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं क्लियर करके यहाँ से जाएंगे, जाने से पहले सब क्लियर कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, बदलता है, क्योंकि जितना हम मेडिटेशन, इसलिए कहते हैं पाप दग्ध करने के तीन तरीके हैं। पिछले जन्मों में कुछ ना कुछ जरूर छोटे मोटे बड़े पाप कर्म जरूर किए होंगे, इस जन्म में भी किए होंगे, दूसरे जाने अनजाने में किसी ना किसी को दुख दिया होगा हमने, राइट, वो पाप कर्म में गिना जाता है, जिसको भी जाने अनजाने में हमने दुख दिया है। तो उस पाप कर्म को दग्ध करने के तीन तरीके हैं। एक है मेडिटेशन से, मेडिटेशन में वो भी एक पावरफुल बीज रूप स्थिति हम कहते हैं। मेडिटेशन को सीखते सीखते करते करते आप ऐसे स्टेज पे पहुंच सकते हैं जो कुछ सेकेंड के लिए, कुछ मिनटों के लिए वो बीज रूप स्थिति हम कहते हैं, जो एकदम में सोल कॉन्शियसनेस पूरा 100% और परमात्मा के कॉन्शियसनेस में वो कनेक्ट होकर के जब हम उस बीज रूप स्थिति में होते हैं तो वो पाप दग्ध होते हैं, बर्न आउट हो जाता है, क्लीन नहीं होते है, बर्न आउट होता है, क्योंकि बर्न होने के बाद, भस्म होने के बाद उसको फिर से पनपता नहीं है वो, राइट। बर्न होना बहुत जरूरी है, क्योंकि काटने से फिर वो पनपता है, बर्न होना बहुत जरूरी है। और दूसरा तरीका है शारीरिक व्याधियां, जो पेन होता है, दर्द होता है, डिसीजेस, जो बीमारियां है उससे दुख होता है, तो वो उससे हमारा जो पाप कर्म है उससे भस्म होता है। और तीसरी चीज है संबंधों के दुख, तो लोगों से जो अनबन होता है, दुख मिलता है सामाजिक इसमें परिसर में, जो दुख मिल रहा है तो उससे जितना हम दुख अनुभव करते हैं वो दुख उसके कारण से वो पाप दग्ध होना शुरू होता है। तो इसलिए कहते हैं बच्चा जब गर्भ में होता है उससे मैक्सिमम पाप दग्ध होते हैं वहां। क्यों? क्योंकि बच्चा जब गर्भ में होता है तो वो पेन बहुत अनुभव करता है, क्योंकि इतने से जगह है, उसको मुंह करने के लिए कोई जगह ही नहीं। अब आपको अगर कहे एक कुर्सी में बैठना है, मुंह नहीं करना है, है ना, एक फीट बाय एक फीट के इस जगह पर आपको बैठना है, एक घंटा भी बैठना मुश्किल हो जाता है, राइट। लेकिन वो छोटा सा बच्चा, वो बढ़ रहा है, शरीर बढ़ रहा है, लेकिन जगह इतनी सी है और पिछले जन्मों की याददाश्त भी उसके साथ है और बहुत कुछ दर्द दुख महसूस कर रहा है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, राइट। तो वहां इसीलिए कहते हैं गर्भ जेल है उसके लिए। तो इसलिए वहां पाप दग्ध होता है। तो इसलिए जो ज्यादा पाप किए होते हैं ना, तो वो जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, बार बार वो गर्भ जेल में जाते हैं, क्योंकि जन्म लिया कुछ महीनों में शरीर छोड़ा, जन्म लिया कुछ महीनों में शरीर छोड़ा, तो गर्भ जेल में ज्यादा वो पनिशमेंट महसूस करता है, करती है आत्मा। तो इसीलिए अगर आपने पाप कर्म दग्ध करना है तो मेडिटेशन इज अ वेरी क्या है, बहुत ही अच्छा तरीका है, जो दुख के बिना हम उन पापों को भस्म करते हैं। और दूसरा ये होता है रियलाइजेशन होता है, ठीक है, पिछले जो भी ये है हिसाब किताब वो तो चुक तो कर ही रहे हैं, लेकिन नया हिसाब किताब हम बना नहीं रहे हैं, क्योंकि कर्मों की गुह्य गति के बारे में हमें समझ है, नया हिसाब किताब हम नहीं बनाते, राइट। मौन और शांति में अंतर क्या है? यस, मौन केवल मुख का मौन होता है, शांति आत्मा की स्थिति होती है। भले आप बहुत बिजी मार्केटप्लेस में हैं, बहुत इसमें है, तो भी आप शांत रह सकते हैं। स्थिति बहुत सुखद है तो फिर वो शांति है, ये एक्सटर्नल नहीं है, भले शोर शराबा है, चारों तरफ आवाज है, लेकिन मन बड़ा शांत है, ना, वो है शांति। हाँ जी, कोई और क्वेश्चंस है? किससे दर्द होता है? नाम लेता है, परमात्मा के नाम लेते हैं। केवल नाम लेने से नहीं होता, उस स्थिति में स्थित होना जरूरी होता है। केवल हम नाम ले रहे हैं कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मुख से बोल रहे हैं लेकिन मन कहीं और भटक रहा है, उससे कोई फायदा नहीं है, है ना। मन एकाग्र होना चाहिए परमात्मा में, वो फिर वो शक्ति डाउनलोड होता है। वही है तरीका। हाँ जी, किसी और के पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्लारिफिकेशन चाहिए किसी बात का, अभी तक जो सुने हैं तीन चार दिनों में? अच्छा, ओके, किसी और के पास क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, आप पूछ लीजिए। These two are different things. क्योंकि एक क्वेश्चन आप सभी ने सुना होगा कि प्रोफेशन, क्वेश्चन ये है कि जब हम प्रोफेशन में जब आगे बढ़ते हैं तो एम्बिशियस होते हैं, तो एग्रेसिवली उसको प्रोसीड करने के लिए हम करते हैं, और एक जब शांति की बात करते हैं तो फिर वो ठहराव लाने की बात आती है। लेकिन हम ये नहीं कहते ना मेडिटेशन में कि आपको एम्बिशियस नहीं रहना है। तो एम्बिशियस भले रहे, लेकिन फिर किसी को नुकसान पहुंचा करके मैं चढ़ू ये बात नहीं है, कि मुझे अपने ट्रैक पर आगे बढ़ना है ना। जैसे इट्स लाइक अ रेस, लाइफ इज लाइक अ रेस। जैसे आप मान लीजिए 100 मीटर्स रेस में सभी खड़े हैं, हर एक के अपने अपने ट्रैक है। अभी मेरे ऊपर डिपेंड करेगा मैं कितनी दौड़ लगाऊं, कितने फास्ट गति से दौड़ लगाऊं। अगर मैं ये सोचूं दूसरों को नीचे गिरा करके मैं दौड़ू, दैट इज रॉन्ग। लेकिन मुझे पूरी छुट्टी है, मैं कितने भी स्पीड से मैं भाग सकती हूं, राइट। और स्पिरिचुअलिटी इसमें मदद करता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को अपनाने से एक मन शांत होने के कारण से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ता है। कम समय में आप ज्यादा अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपके मन में क्लैरिटी है। कंफ्यूजन, क्योंकि ज्यादा समय कहां बर्बाद होता है? जहां कंफ्यूजन है ना, वहां समय बर्बाद होता है। जब क्लैरिटी है क्या करना है, क्या करने से अच्छा होगा, तरक्की होगी, तो क्लैरिटी के साथ आप कर, भले आप बाहर से लग रहा है कि ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कदम आप उठा रहे हैं और राइट दिशा में आप उठा रहे हैं, तो तरक्की तो ऑटोमेटिकली जल्दी होगा ना, राइट। एम्बिशियस होना वो गलत बात नहीं है, लेकिन दूसरों को दुख देख करके आगे बढ़ना वो गलत बात है। हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, पूछ लीजिए। हाँ, बोथ फादर, मदर, टीचर, सदगुरु, सब। यहां मेडिटेशन में यह सिखाया जाता है परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़िए, पिता का भी, माँ का भी, टीचर का भी, सदगुरु का भी, फ्रेंड का भी, है ना, खुदा दोस्त कहते हैं ना, तो अलग अलग संबंधों का फ्लेवर अपना है, आनंद अपना है ना। तो हर एक संबंध जोड़ना है, पिता से शक्ति मिलती है, प्रॉपर्टी मिलती है, माँ से अफेक्शन मिलता है, निस्वार्थ स्नेह मिलता है, शांति मिलती है, टीचर से ज्ञान मिलता है, सद्गुरु से सद्गति का मार्ग मिलता है, मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग मिलता है, है ना। फ्रेंड से एक अपना जो भी है शेयर करने की बात है, परमात्मा के साथ जो भी दिल की बातें हैं आप शेयर कर सकते हैं, खुदा को दोस्त बना के देखिए, यू विल एंजॉय द मोस्ट, है ना, सब संबंध जोड़ सकते हैं। हाँ जी, हाँ गलती हो गई मेरा मुझसे, ये थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि अभी ना सब कुछ फास्ट फास्ट चाहिए, इंस्टेंट, है ना। तो आपका सब कुछ फास्ट हो गया है, कम्युनिकेशन फास्ट हो गया, एंटरटेनमेंट फास्ट हो गया, फास्ट सब, फास्ट फूड हो गया, सब कुछ फास्ट हो गया। सोचते हैं कि चलो अब मैंने 3 दिन मेडिटेशन कर लिया, 1 हफ्ता मेडिटेशन कर लिया, फिर सोचते हैं कि मैं पूरी तरह बदल जाऊं, ये संभव नहीं है, है ना। तो लगातार करने की जरूरत है। जैसे आप मान लीजिए आपके जीवन के 20 साल आपने एक्सरसाइज ही नहीं किया, फिजिकल एक्सरसाइज ही नहीं किया 20 साल, तो उसके बाद आप सोचते कि चलो जिम ज्वाइन कर लूं, थोड़ा सा मसल डेवलप करूं, थोड़ा हेल्दी हो जाऊं। तो 1 महीना आपने जिम किया, फिर जिम कर लेने के बाद सोचिए कि आपका बाइसेप्स अच्छा होना चाहिए, आपका सिक्स पैक होना चाहिए, तो ये 1 महीने में हो जाएगा। 20 साल आपने किया ही नहीं एक्सरसाइज, 1 महीना जिम करने से ये सब कुछ डेवलप होगा, 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 नहीं होगा। कि लगातार हर रोज करने की जरूरत है। एटलीस्ट कहते हैं हफ्ते में 5 दिन तो करना चाहिए एक्सरसाइज, राइट। तो तब जाकर के वो मसल डेवलप होगा बॉडी का। तो बॉडी रेस्पॉन्ड करने के लिए इतना टाइम कर रहा है, दे रहा है, तो फिर मन समय देगा, समय लेगा ना। तो इसलिए लगातार करने की जरूरत है, हर रोज करने की जरूरत है। हर रोज केवल आधा घंटा भी आप कर बैठ करके मेडिटेशन करें ना, तो फिर धीरे 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 वो परिवर्तन दिखाई देने लगता है। और ये देखिए कि इंटेंसिटी कम होना शुरू होता है। पहले मान लीजिए आप क्रोध पर मेहनत कर रहे हैं, रोज आप शांति की स्थिति में वो अनुभव कर रहे हैं, तो वो आप क्रोध पर विजय पाने की कोशिश कर रहे हो, राइट। तो आप देखेंगे पहले आप दिन में 5 बार गुस्सा करते थे, अभी 4 बार करने लगे, 3 बार करने लगे, और पहले बहुत चिल्ला चिल्ला करके बहुत जोर जोर से गुस्सा करते थे, उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी धीरे 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 कम होते होते होते, हाँ ये नहीं कह सकते 1 हफ्ता मैंने मेडिटेशन कर लिया पूरा जीरो हो जाए गुस्सा, नहीं होता। परसेंटेज और फ्रीक्वेंसी कम होना शुरू होता है, धीरे कम होते होते ऐसा समय आएगा जब आपका गुस्सा पूरा जीरो हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, राइट, और लगातार करने की जरूरत है बस। हाँ जी, नहीं, क्योंकि वो जो प्रमोशन देने वाले जो अथॉरिटी आप नहीं हो, आपने आपके बॉस ने आपको प्रमोशन दिया, राइट, और आपके एबिलिटी को देखते हुए आपको दिया। सो अगर आपके कोलीग को अगर बुरा लग रहा है उसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं हमें देख करके अगर कोई ईर्ष्या करे तो उसमें हमारा कोई ये नहीं, दोष नहीं है। नहीं, दोनों में से एक तो चूज करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, क्योंकि दोनों को तो चूज नहीं कर सकते ना, तो दोनों नहीं चूज करते, तो प्रैक्टिकल है ये, रियलिटी है, वो सीट एक ही है, एक का ही है, तो एक को ही अपॉइंट कर सकते हैं, तो दूसरों को तो बुरा लगेगा ही, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हाँ, अपने आप को फिर वो इसको अपने आप को समझना होगा, क्या गलती हुई मेरे से, या फिर क्या परिवर्तन कर सकते हैं, क्या हम अच्छा कर सकते हैं, वो देखना होगा, है ना। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जब क्वेश्चन ये है कि जब हम कहते हैं, जो भी हम लाइफ में महसूस करते हैं या जो भी मिलता है, अपने कर्मों का ही रिजल्ट है, राइट? तो यहां गॉड का क्या रोल है, परमात्मा का क्या रोल है, आपको क्या लगता है? अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम आ रहा है, राइट? एक ऐसा स्टूडेंट है जो मेहनती है, साल के स्टार्टिंग से ही वो मेहनत कर रहा है, रोज पढ़ रहा है, सिलेबस पूरा कर रहा है, और दूसरा स्टूडेंट ये है कि पढ़ाई नहीं कर रहा है, लेकिन फिर लास्ट एग्जाम के टाइम पे रोज मंदिर जा रहा है, भगवान को याद कर रहा है, प्लीज भगवान मुझे पास करा दो, पास करा दो, पास करा दो। तो अभी राइट किसकी है, किसको ज्यादा मार्क्स मिलना चाहिए, जिसने मेहनत किया है या फिर जिसने मेहनत नहीं की, केवल भगवान को याद किया? जिसने मेहनत की उसको एक्चुअली मिलना चाहिए ज्यादा मार्क्स, राइट? तो होगा भी ऐसे, क्यों? क्योंकि यहां हम ये नहीं कह सकते मैं मेहनत नहीं करूंगी और केवल मैं भगवान को, जैसे हे भगवान मुझे पास करा दो, मैं 1001 रुपए चढ़ा दूंगी। क्या भगवान को 1000 रुपए की जरूरत है? क्या 101 नारियल की जरूरत है? नहीं, वो तो दाता है, देने वाला है, वो सागर है, सर्वशक्तिमान है। मैं एक थोड़ा सा लालच दिखा करके, ये मुझे पास करा दोगे तो मैं दूंगी, नहीं पास करोगे तो मैं नहीं दूंगी, है ना। देंगे तो ये देंगे, उसको क्या पड़ी है कि चलो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा 101 नारियल, है ना। तो ये यहां क्या कैसा काम करता है, मेहनत तो जरूर करना है, लेकिन फिर भगवान को याद करने से हमारे मन की क्लैरिटी बनी रहेगी। एक है मन की क्लैरिटी और दूसरा है शक्ति। अगर चैलेंजेस आते हैं जीवन में, उसको सामना करने के लिए हिम्मत, उसको सामना करने के लिए सहन की शक्ति, बहुत सारी शक्तियों की जरूरत होता है जीवन में, राइट? तो इसीलिए भगवान को जब हम याद करते हैं, वो शक्तियां हमें महसूस होता है, आत्मा सशक्त बन जाती है, तो जीवन के चैलेंजेस को फेस करने के लिए वो शक्ति मिलती है, राइट? परमात्मा को याद करने जैसे वो लिफ्ट का काम करता है। तो इसीलिए ये तीसरा व्यक्ति, तीसरा स्टूडेंट जो है, वो मेहनत भी कर रहा है लेकिन मेडिटेशन भी कर रहा है, उससे क्या होगा, क्लैरिटी होने के कारण से उसके अंदर कम मेहनत में ज्यादा उसको समझ में आ रहा है, ज्यादा उसको रिजल्ट मिल रहा है, है ना, ये बात है। हाँ जी,
सामने वाला बहुत ही डिफरेंट तरीके से सोचता है,
हाँ, क्योंकि इमीडिएटली इसीलिए कहते हैं नब्ज देख करके दवाई दो, है ना। तो सिचुएशन को देखते हुए, उस व्यक्ति के पर्सनालिटी को देखते हुए थोड़ा बहुत उसको उस रीति से समझाना पड़ेगा। कहीं बार समझाने से भी नहीं चलता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वाइब्रेशंस, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन, गुड विशेस के वाइब्रेशंस। हाँ जी, ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। ओके, सिचुएशन ये है कि आप वेजिटेरियन हैं, आपके हस्बैंड नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आपको उसको बना के देना पड़ेगा। या फिर आप सिचुएशन को देखिए कि अगर आप अपने हस्बैंड को बोल सकते हैं, अगर आपको नॉन वेजिटेरियन खाना है तो होटल में खा लीजिए, मैं नहीं बना सकती हूँ, अगर आपको हिम्मत है तो, राइट। अगर हिम्मत नहीं है सो देन बना के देना पड़ेगा, राइट। सो इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल रिलेशनशिप। जो हम देखो मार्ग बताएंगे, परमात्मा भी क्या कहते हैं कि ये इस रोड पे चलोगे, इस मार्ग पे चलोगे तो अच्छा है, इस मार्ग पे चलोगे इतना अच्छा नहीं है। तो हमें वो ढूंढना पड़ेगा कैसे मैं कर सकती हूं, कितना फॉलो कर सकती हूं, कैसे फॉलो कर सकती हूं। वो सॉल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा, मैं सबके सामने वो सॉल्यूशन नहीं दे सकती हूं। वो सॉल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, एक मिनट, एक और हाथ आया है। जी जी, हाँ जी, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे। हाँ जी, हाँ। ओके, तो खाएंगे क्या? हवा खाना पड़ेगा फिर। ये टॉपिक मैं यहां खोलना नहीं चाहती हूं क्योंकि बहुत ज्यादा फिर डिस्कशन होगा इसके बारे में। बहुत सारे पेपर्स ऑनलाइन में भी अवेलेबल हैं, तो आप थोड़ा सा वो देख जा करके आप पढ़ लीजिएगा, है ना। क्यों वेजिटेरियन होना चाहिए, ह्यूमन बॉडी के जो बनावट है तो वो वेजिटेरियन फूड के लिए है, नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए है। और दूसरी बात है कि मनोदिशा, जब एनिमल्स को मार रहे होते तो उसके फीलिंग्स के हार्मोन्स वो सब कुछ परिवर्तन हो जाता है, तो उस वही फीलिंग्स फिर जो खाने वाले में वो आ जाता है। सो बहुत सारे एलोबोरेट एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में, तो आप ऑनलाइन जाकर के उसको देख लीजिएगा, है ना। तो इसीलिए हम वेजिटेरियन फूड प्रमोट करते हैं यहाँ स्पिरिचुअलिटी में, वेजिटेरियन फूड। और वो भी अगर और गहरा अगर जाना है स्पिरिचुअलिटी में, हम प्याज लहसुन भी, आपने तीन दिन यहाँ भोजन किया तो प्याज लहसुन भी नहीं था उसमें, राइट। प्याज लहसुन के बिना भी स्वादिष्ट भोजन बन सकता है ना। तो ये बात है, ठीक है। हाँ जी, आप कितना क्लोज है डिपेंड करता है, है ना, इट डिपेंड्स ऑन ईच वन्स जर्नी. क्वेश्चन था हम सत्य के कितने क्लोज है, ईच वन्स जर्नी, कि हमें यह पता नहीं ना कि हम शरीर कब छोड़ने वाले हैं. तो मेरा संपूर्ण स्थिति वो काउंट करता है. अराउंड 10 years, लेकिन वो सीधा प्रोसेस होता रहेगा. ऐसा नहीं कि अचानक धमाका हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है. अभी बिल्डअप होना शुरू हो गया है. ऑलमोस्ट कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है, राइट? ये शुरुआती है. तो धीरे धीरे बिल्डअप होते 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 फिर वो सारा विनाश होकर के फिर एस्टैब्लिशमेंट में ही भी तो टाइम लगेगा ना, तो बहुत कम समय है. अगर वो सब काउंट करेंगे तो और कम समय है, उससे भी कम है. क्योंकि प्रॉपरली, क्योंकि कोरोना काल में जो हमने महसूस किया कि कैसे सिचुएशंस आ सकता है, राइट, उससे भी बहुत परसेंटेज में विकराल परिस्थितियां आएंगी, आप इमेजिन कर सकते. तो उस समय हमारे पास टाइम नहीं होगा पुरुषार्थ करने के लिए. तो अभी जो भी समय है कर लेना चाहिए, जो भी करना चाहिए कर लेना चाहिए. अभी इस थियोरी को देख लेके, ये थियोरी नहीं है, प्रैक्टिकल है. कौन सा उथल पुथल है कि विनाश होने वाला है. ओके, वेट एंड वॉच देम. अगर मानने के लिए तैयार नहीं है तो प्रैक्टिकली जब होगा तब आप मानेंगे ना. फिर चलिए थोड़े समय के लिए मेडिटेशन कर लेते हैं. अभी उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं है. ये जो विधियां तो आप सभी को सुनाई होगी लास्ट सेशन में, लेकिन फिर मेडिटेशन करते समय हम लोग 3 चीजें यूज करते हैं. उसके एक मिनट बहन जी रुको, मैं थोड़ा सा बताती हूँ, अभी पूरा नहीं हुआ है. एक है ओपन आई मेडिटेशन करते हैं. ओपन आई मेडिटेशन इसलिए है क्योंकि कर्म करते समय भी हम नेचुरल स्थिति रहे मेडिटेशन का, तो इसीलिए ओपन आई मेडिटेशन करते हैं. ओपन आई में हाफ क्लोज होता है, पूरा खोलते नहीं है आंखों को, हाफ क्लोज होता है ताकि फिर मेडिटेशन करते समय आंख कहीं एक जगह पर फिक्स्ड है लेकिन मन पूरा फोकस है यहां, राइट? क्योंकि जैसे आंख यहां वहां मैं देख रही हूं, मन भी भटकता है. आंखों को भटकाने से मन भी भटकेगा. तो मन को एकाग्र करने के लिए आंखों को एक जगह पर स्थिर रखना होता है, राइट? अगर मैं वहां इस चित्र को देख रही हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं वहां से शक्ति की अनुभूति कर रही हूं, नहीं, केवल मैं आंखों को फिक्स कर रही हूं एक जगह पर, लेकिन मेरा फोकस यहां है और ऊपर है, राइट? ये है. और दूसरी बात ये है, मेडिटेशन करते समय 3 शक्तियों को यूज करते हैं. एक है विचारों की शक्ति, थॉट पावर. वी क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स. मैं आत्मा हूं, वो जो भी हम कमेंट्री देते हैं, सजेशंस देते हैं, वो थॉट्स देते हैं, राइट? पॉजिटिव थॉट्स. दूसरी बात यह है विजुलाइजेशन. केवल आपको सोचना नहीं है, सोचने के साथ साथ आपको विजुलाइज करना है. जैसे अगर आपको कहे कि यहां बैठे बैठे आप महसूस करना कि एक सागर किनारे पर हो, देखो अपने आप को, तो माइंड, द बुद्धि, इंटेलेक्ट हैज द पावर, बुद्धि हैज द पावर टू सी. इसलिए कहते हैं बुद्धि को तीसरी आंख, थर्ड आई ऑफ द सोल, बुद्धि को, क्योंकि हम देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। तो मेडिटेशन में जितना क्लियरली विजुलाइज कर सकते हैं उतना आप क्लियर पावरफुली आप महसूस कर सकते हैं। तीसरी बात ये है फीलिंग, फीलिंग माना महसूस करना। अगर आपको कहे ये विजुलाइज करना कि आप एक आपके हाथ में एक नींबू है, आप नींबू को खा रहे हो, विजुलाइज करना, विजुलाइज करिए कि आप एक नींबू खा रहे हैं, कुछ आपके मुख में परिवर्तन चेंजेस आया, सलाइवेट हुआ, राइट? आपने खाया नहीं है लेकिन केवल महसूस किया, वो बॉडी रिएक्ट हो गया। सो ये तीनों चीज जब हम करते हैं ना, सचमुच आत्मा पर इंपैक्ट पड़ता है। थॉट्स, विजुलाइजेशन और फीलिंग्स, महसूस करना। जब हम ये कहते हैं शांति की शक्ति में महसूस कर रही हूं, फील इट, केवल सोचना नहीं है, फील करना, सचमुच मैं शांत होती जा रही हूं, मन शीतल होता जा रहा है, राइट? तो ये तीनों को यूज करते हुए मेडिटेशन करेंगे। चले थोड़े समय के लिए मेडिटेशन करते हैं, और मेडिटेशन करने का अच्छा समय है सुबह उठते ही, उठते ही तो 20 मिनट्स होता है, वो बहुत ही पावरफुल समय होता है, क्योंकि अमृत वेला उठे तो बहुत अच्छी बात है। अगर अमृत वेले उठने की आदत नहीं है, 6 बजे उठे, 5 बजे उठे, तो उठते ही थोड़ा वॉशरूम गए क्या, फिर उसके बाद तुरंत विद इन 20 मिनट्स आपको मेडिटेशन कर लेना चाहिए, ताकि फिर वो सबकॉन्शियस माइंड में वो सब कुछ भर जाए, और नेक्स्ट सोने से पहले। ये दो टाइम बहुत पावरफुल है मेडिटेशन करने के लिए। चलिए दोनों पैर जमीन पर रखेंगे, क्रॉस लेग्स नहीं करें, और जैसे मैं बोलती जाऊंगी वैसे आप सोचते जाएंगे, विजुलाइज करते जाएंगे और महसूस करते जाएंगे। कोई भी एक जगह पर आप अपने आंखों को स्थिर करें और फोकस करें अपने मन और बुद्धि को अपने भ्रुकुटी के मध्य में। आसपास के वातावरण से, आवाजों से मन और बुद्धि को विथड्रॉ करते हुए मन के स्क्रीन पर केंद्रित करें, भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करें, और अपने आप को देखें एक चमकता हुआ अजब सितारा। अजर, अमर, अविनाशी आत्मा, लिविंग एंटिटी, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूं। इस शरीर का मालिक हूं, राजा हूं। मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में बैठकर इन आंखों की खिड़कियों के द्वारा बाहर की जगत को देखती हूं कि देखने वाली मैं आत्मा हूं। कानून द्वारा सुनती हूं, अलग अलग कर्मेंद्रियों के द्वारा अलग अलग कर्म करती हूं। कर्म करते हुए भी मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न हूं, अलग हूं। मुझ आत्मा का निजी गुण शांति है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मेरा ओरिजिनल नेचर है। शांति के प्रकंपन मुझ आत्मा से चारों तरफ फैल रही है। जैसे मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, ऐसे मेरे पिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु। वो शांति का सागर सर्वशक्तिमान है। मैं आत्मा उस पिता के अति प्रिय संतान, शांत स्वरूप। शांति के प्रकंपन परमात्मा से मैं महसूस कर रही हूं। अपने में भरती जा रही हूं, निरंतर परमात्मा से ले रही हूं और संसार को दे रही हूं। निरंतर परमात्मा से ले रही हूं और संसार को दे रही हूं।